ओम शांति। कल का बाबा का सीन सभी ने नैनों में समा लिया सदा के लिए या धीरे धीरे डाउन हो जाएगा? इतना समा लेते हैं हम सब कि द्वापर युग से भी इन्हीं दृश्यों की यादगारें शास्त्रों में लिखी जाती हैं। भागवत सारा इन्हीं दृश्यों का लिखा हुआ है। मुझे याद आ रहा था कल जब बाबा के आगे सब डांस कर रहे थे तो श्री कृष्ण को गोपियां नीचे छाछ के लिए डांस करा रही हैं, कहती हैं छाछ तब देंगी पहले नाचो। तो ऊपर लक्ष्मी नारायण से पूछ रही है ये क्या हो रहा है, तुम तीनों लोगों के मालिक और ये ग्वालिन तुम्हें छाछ पे नचा रही हैं। तो तुरंत उसको दिखाते हैं कि ये जो गोपियां हैं ग्वालिन जिन्हें तुम कह रही हो ये पूर्व जन्मों में कौन थे। तो दिखाया वो सभी बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या में मग्न हैं और भगवान को कह रहे हैं जब आप इस धरा पर आओ तो हमें तो केवल आपका प्यार चाहिए। तो कल मैं सोच रहा था सामने वाले साधारण माताएं डांस कर रही हैं, ये सब पूर्व जन्मों के बड़े बड़े ऋषि मुनि और वो भक्त हैं जो भगवान से बहुत प्यार करते थे। वही है ना, सब वही हैं। तो इस सीन को अपने अंतर चित्त में इतना समा लें कि रोज सवेरे उठते ही आंखों के सामने आ जाए तो योग बहुत अच्छा लगेगा। सहज योग जिसमें कठिनाई नहीं, हम राजयोग को प्रेम योग बना दें, है ना प्रेम योग। कल बाबा ने कहा किनकी सभा है ये? प्रभु प्यारों की। थोड़े से ही महावाक्यों में अच्छे अच्छे शब्द आ गए। प्रभु प्यारों की सभा है, बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं और वाह वाह तो बहुत बार किया। भगवान को अपने सभी बच्चे प्यारे लगते हैं इसलिए उसके लिए प्रसिद्ध है उसका प्यार अनकंडीशनल लव है, बिना शर्त के प्यार है, सबको प्यार करता है जैसे माताएं अपने सभी बच्चों को प्यार करती हैं, छोटों को सबसे ज्यादा। तो बाबा भी छोटों को ज्यादा प्यार कर रहा था जो 1 साल 2 साल के हैं, ताकि वो प्यार उनके चित्त में समा जाए। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के प्यार का आधार दूसरा हो जाता है, कौन सा? बच्चों की योग्यताएं। माताएं जानती हैं ना इन बातों को, मैं नहीं जानता तो आपका विषय है या नहीं। ये बचपन में सबको बहुत प्यार, बच्चे बड़े हुए तो प्यार होगा योग्यताओं के अनुसार। बिजनेस है, एक बच्चा बिजनेस में बहुत साथ देता है बाप को तो बहुत प्यार रहेगा। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है तो बहुत प्यार रहेगा। और एक बिल्कुल कुछ नहीं करता, आज की दुनिया में शराब पीता है तो प्यार तो रहेगा परंतु मजा नहीं आएगा ना उस प्यार में। बाबा हम सभी को बहुत प्यार देता है, उसका प्यार नंबर वार भी है जो कल बाबा बार बार रिपीट कर रहे थे। सभी से भी है लेकिन फिर योग्यताओं के अनुसार नंबरवार भी है। साकार में जब बाबा थे तो याद प्यार देते हुए प्राय ये शब्द बोलते ही थे, बड़े फोर्स से बोलते थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे बोलते थे। तो दादियां बाबा को कहा करती थी, ये क्यों बोलते हो बार बार, कि नहीं जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसा प्यार वो प्राप्त करते हैं। तो हमें प्रभु प्यारा बनना है। वैसे दुनिया में अगर ये शब्द बोले ये प्रभु प्यारा है तो माताएं लड़ाई कर देंगे, मेरे बच्चे को ऐसा क्यों कहा, प्रभु प्यारा माना गए। लेकिन यहाँ जिंदे ही सब प्रभु प्यारे हैं। हम तो बाबा को बहुत प्यार करते ही हैं, पर वो भी हमें बहुत प्यार करता है। सच तो यही है कि उसका प्यार हम सबकी पालना है। माताएं जानती हैं, नहीं जानती हो तो आज से जान लें। जिन बच्चों को माँ बाप का बहुत प्यार मिलता है उनका जीवन कुछ और होता है, और जिनको नहीं मिलता उनका कुछ और होता है। पता है ना माताओं को, अंतर हो जाता है बहुत बड़ा। जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला उनका जीवन रूखा सूखा, और जिनकी प्यार से पालना हुई चाहे वो कैसे भी हो, हरे भरे खुशनुमा जीवन रहेगा। और प्रभु प्यार जन्म जन्म के लिए हमारी पालना कर देता है। दो युग तक तो उसका प्यार प्रत्यक्ष रूप में है, प्यार में वो स्वर्ग दे गया। यदि हम स्वर्ग के बारे में विचार करें और जो कुछ हमें वो देता है उसके बारे में विचार करें, तो वर्तमान में हमारा पुरुषार्थ उसकी भेंट में कुछ भी नहीं है। अगर सोचें हमने जरा सा किया है और उसने अथाह धन संपदा दी है, ये अभी हमें पता नहीं चलता। सतयुग के अगर हमें सतयुग का क्लियर दृश्य हमारे सामने हो, कितनी धन संपदा हमारे पास होगी, और वो भी एक जन्म नहीं, यहाँ तो एक जन्म में मिल जाता है सब कुछ। एक जन्म में पुण्य किए हो, एक जन्म में उसका सब कुछ मिल जाएगा। अगले जन्म में 20-21 जन्म सोचने की बात है। इतना देता है कि दुनिया ही भरपूर रहती है, प्रकृति का संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। यहाँ तो प्रकृति का ही कष्ट बहुत ज्यादा है। तो बाबा के प्यार के हम पात्र बन जाएं, पहली चर्चा हम अब इस पर करते हैं। वाह वाह हो जाए, वाह बच्चे वाह तो बाबा कह रहे थे, लेकिन वाह वाह हो जाए हमारी, यही तो बाबा चाहते हैं ना। एक बाप यही चाहता है उसके बच्चों की वाह वाह हो जाए। तो प्रभु प्यार किसे मिलता है, और आज हम पक्का करेंगे। पहली चीज ये पक्का कि जो सीन देखा है कल, वो रोज उठते ही, किस किसने डांस किया था कल, डांस करने वाले हाथ उठाओ। अच्छा, हाँ मन का भी अच्छा है, पर मैं स्थूल बात पूछ रहा हूँ, स्थूल बात पूछ रहा हूँ। हाँ मन का भी श्रेष्ठ है। तो रोज सवेरे उठ के डांस करना, उस सीन को सामने लाना, हम बाबा सामने है, हम डांस कर रहे हैं, अन्यथा मानस पटल पर वो छवि उभर कर आ जाए। उसको इतना गहराई से प्रिंट कर देना, देखा है ना आजकल वो हाथों पे खुदवा देते हैं, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, ऐसा खुदवा देना कल का सीन। मेहंदी तो उतर भी जाती है, लेकिन वो परमानेंट। तो ऐसा ही कल का सीन मस्तक पर खुदवा देना और उठते ही याद करना। ये सीन हम भी सोच रहे थे, 3 साल के बाद पहली बार देखा है ना छोटे लाल, तरस गई थी आंखें, हमारी भी तरस गई थी कि हमारा वो बाबा कहाँ चला गया पहले वाला, सोचते थे हम भी, क्योंकि बहुत कुछ देखा है ना इस जीवन में, यहाँ देखा है, हिस्ट्री हॉल में देखा है, समीपता से देखा, बाबा कमरे में, बाबा बहुत बार कमरे में आए, वहां देखा भगवान कैसे अपने बच्चों को प्यार करता है, ये बहुत अच्छी तरह देखा है, कैसे वो पालना करता है साधारण आत्मा को, ऊपर उठाकर विश्व महाराजन बनाने तक ले जाता है, कैसे वो अपना सत्य ज्ञान देकर हमारी जन्म जन्म की खोज समाप्त कर देता है। उसे पता है किसने भक्ति में उससे क्या मांगा है, हमें नहीं पता, उसे सब याद है, हमें कुछ याद नहीं, वो हर बात का रेस्पॉन्स देता है, ये हमने देखा है। तो 3 साल के बाद कल बाबा का ये स्वरूप देखकर मन आनंदित हो गया, आप सबका भी हो गया। किनको मिलता है भगवान का प्यार, 5-7 बातें निकालेंगे और आज से उन्हें पक्का करेंगे, ये प्यार अमर प्यार रहे, हम उसे प्यार करें या न करें वो हमें प्यार करे। देखिए हमारे प्यार के ये स्वरूप हैं, पहली बात आई सच्चे जो हैं उन्हें भगवान का प्यार मिलता है, और सच्चाई की डेफिनेशन बहुत गहरी है। सच्चाई से नहीं कहते कि गलती करके आए और बाबा को सच बता दिया, कल फिर कर आए फिर बता दिया, फिर अगले दिन कर ली फिर बता दिया, ये सच्चाई नहीं, केवल ये भी होनी चाहिए। लेकिन असली में सच्चाई की डेफिनेशन अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना, मुरली है इस पर बाबा के, सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना, बाबा के सत्य स्वरूप को बहुत अच्छी तरह जान लेना, उसमें संपूर्ण विश्वास हो जाना। दूसरी, अब बहन बताएंगी कि नहीं भगवान बहुत प्यार करता है, मुरलियों में सब आया है जो बहुत पवित्र हैं, भाई फोन जरा अपने झुनझुने बंद रखो, जो बहुत पवित्र हैं वो भगवान को बहुत आकर्षित करते हैं। दूसरी बात, पवित्र आत्माएं भगवान को अति प्रिय हैं, क्योंकि वो उसके अति समीप भी हैं और उसके बहुत ज्यादा सहयोगी हैं, और सबको ये ख्याल रहे हमारी प्योरिटी के आधार से ही प्रकृति सतो प्रधान बनती है। सत्य धर्म की स्थापना का आधार प्योरिटी है, योग बल से राजा स्थापित होती है और प्योरिटी के बल से धर्म स्थापित होता है। प्योरिटी के बल से ही ये प्रकृति सतो प्रधान बनती है, हमारे शरीर सब पावन हो जाते हैं। तो जो बहुत पवित्र हैं वो भगवान को अति प्रिय हैं। तीसरी बात, हाँ थोड़ी और गहरी बात सुनाएंगे अब, जो मैंपन से मुक्त हैं, कुछ धारणाएं ले लें एक साथ, जो संतुष्ट हैं, जो मैंपन से मुक्त हैं, जो सबको बहुत सुख देते हैं, सब ध्यान रखेंगे बाबा की मुरलियां हैं इसमें, जो बच्चे सुखदायी हैं वो बाप को बहुत प्रिय हैं, जो मैपन वाले हैं वो ऑटोमेटिकली भगवान से दूर हैं, जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान का प्यार नहीं है। मैं वो एक कहानी सुनाया करता हूँ, सुन लें आप बहुत अच्छी। पार्वती को इच्छा हुई, महादेव जी हम झोपड़ी में ही रहते हैं, सबको तो आपने महल दिए हैं, हमारे लिए भी एक महल बनाओ। मानी नहीं द्रौपदी पार्वती, चलो भाई, कुबेर को आदेश दे दिया। रावण बहुत बड़ा शिल्पीकार था, रावण को ड्यूटी दे दी, महल बना दो बहुत अच्छा सोने हीरो का। कुबेर ने धन दिया, रावण ने महल बना दिया। अब गृह प्रवेश का समय आया, सोचा रावण बहुत बड़ा विद्वान है, पंडित है, इससे ही कराते हैं। उसने सब यज्ञ हवन कर्म कांड किए, पूरा हो गया, गृह प्रवेश का समय आया। महादेव जी ने कहा, पंडित रावण बोलो क्या दक्षिणा चाहिए। अभी रावण था बहुत बुद्धिमान, उन्हें सोचा मैं शिव का भक्त हूँ, शिव भी इसी महल में रहेंगे, मुझे भी इसी महल में रहने को मिल जाए तो वाह वाह, दोनों साथ रहें तो यही मांग लेता हूँ। महादेव जी से मांग लिया, भगवान ये महल मुझे दे दो, आप भी रहेंगे मैं भी आपके साथ रहूंगा। अब महादेव जी का उत्तर था, जहाँ मैं है वहाँ मैं नहीं हूँ, जहाँ मेरा है वहाँ मेरा वास नहीं है। पार्वती को कहा, पार्वती चलो अपनी झोपड़ी ठीक है। तो जहाँ मैं और मेरापन है वहाँ बाबा नहीं, योग ही नहीं लगेगा, दूरी बढ़ जाएगी। और आगे चलो, इन्होंने बोला बाबा मेरा मैं बाबा का, ये बोला ना, मैं बाबा का, बाबा तो मेरा है पर मैं बाबा का सहज काम नहीं है। गीत तो गाए जा सकते हैं, मैं बाबा का बाबा मेरा गीत है ना, लेकिन मैं बाबा का माना फिर मैं और किसी का नहीं। सोच लो माताएं, ध्यान से सोच लेना। इसलिए मैंने कहा ये बहुत गहरी बात है, मेरा सब कुछ तेरा, उस पर मेरा अधिकार नहीं तेरा अधिकार, मेरे तन पर भी केवल तेरा अधिकार, मन पर भी, धन पर भी, मेरे गुणों पर भी, बुद्धि पर भी, घर मकान दुकान बिजनेस धंधे सब पर। इसलिए ये बात बहुत गहरी है। इसको ही बाबा ने कहा, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो संपूर्ण बन जाते हो, मेरापन पूरी तरह लोप। तो मैं बाबा का, मेरा सब कुछ बाबा का, अगर हम ये करेंगे तो बाबा भी कहेगा मैं तुम्हारा और मेरा सब कुछ तुम्हारा। क्या क्या है बाबा के पास, क्या क्या है बाबा के पास जो हमारा हो जाएगा, सर्व खजाने, समस्त शक्तियां, संपूर्ण प्योरिटी, उसकी संपूर्ण मदद सब हमारी। बाबा मेरा है ये छोटी बात नहीं है, मैं जो हम लोग भट्टी में एक चर्चा कराते हैं वो आपको भी सुना देता हूँ। हिस्ट्री हॉल में बाबा आए थे, माताओं की एक भट्टी हुई थी, तब यज्ञ में भट्टी शुरू हुई थी, 69-70 की बात है। तो माताओं को देखकर बाबा ने पूछा, तुम सब भक्ति में कहती थी हे प्रभु जब इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है, लेकिन मैंने एक चीज वो भी दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। बाबा पूछने लगे क्या, माताएं उत्तर देने लगी अच्छे अच्छे। सबके उत्तर सुनकर बाबा ने कहा, मैं भी तुम्हारा हो गया। सोचने की बात है, हमें तो नशा चढ़ गया, भगवान सामने बैठकर कह रहा है मैं तुम्हारा हो गया। सोचो जरा, रामायण में है ये, राम की सुग्रीव से मित्रता हुई, राम ने सुग्रीव को कहा हे राजन आज से हम तुम्हारे हुए। और भी बहुत अच्छी बात लिखी है, तुमने हमें बिन मोल खरीद लिया। माताओं ने भी खरीद लिया है बाबा को बिना पैसे के ही। किससे खरीदा, क्या दिया, प्यार, प्यार, प्यार से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं उसके लिए। भगवान को प्यार और भावनाओं में ही तो बांधा जाता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, प्यार और भावनाएं, न जाने वो किस पर फिदा हो। कौन गरीब माता जो केवल 10 रुपए देती हो उस पर फिदा हो, और जो लाख देता हो उसकी तरफ वो देखता भी ना हो, क्योंकि लाख देकर उसे रहता है मैंने लाख दिए हैं, ये दीदी मुझे पूछती भी नहीं। तो लाख देने के बाद उसे कुछ चाहता है, इसलिए भगवान के पास उसकी वैल्यू कम, और जिसके पास प्यार और भावनाएं बहुत हैं उसकी वैल्यू ज्यादा। हाँ, बहुत दिन की बाबा महिमा करते हैं। तो भगवान मेरा है, सोच लें अच्छी तरह। तो मैं ऐसे सोचा करता था, आप भी सोचेंगे, मैंने ये क्लासेज में बहुत तो सुनाया ही है। मान लो जिस स्टेट से आप हैं वहां इलेक्शन हो जाए, और इलेक्शन में आपका फादर भी MLA चुन लिया जाए, और अचानक उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, मुख्यमंत्री, और आपके पास समाचार आए कि आपका डैडी अब राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है, क्या हो जाएगा सुनते ही? बताओ क्या क्या होगा, माताओं को नशा चढ़ जाएगा, चाल बदल जाएगी, बोल बदल जाएंगे, इंट्रोडक्शन भी बदल जाएगा, और फटाफट सबको फोन कर देंगी कि अब चिंता नहीं करना, अपना डैडी मुख्यमंत्री है, तुम्हें भी कोई काम पड़े हमें बताना। अब मैं पहले माताओं से पूछता हूँ, सभी माताओं को पता चल गया, भाइयों से भी साथ साथ, सभी को पता चल गया जो भगवान है वो तो हमारा डैडी है। डैडी कहो ना, परमपिता नहीं, परमपिता से भी नजदीक आ जाओ। जिसको सारा संसार भगवान कहता है वो तो हमारा डैडी है। तो कह दोगी आज, फोन कर दो सबको कि अगर तुम्हें भगवान से काम पड़े तो हमें बताना, वो तो हमारा डैडी है। कह सकते हैं? हो जाएगा इतना नशा? और अगर ऐसा नशा हो जाए तो वो आपकी हर बात सुनेगा, ये केवल कहने मात्र नहीं रहेगा, सुनवाई होने लगेगी। ऐसा क्लोज रिलेशनशिप उससे जोड़ ले, ये है हम उसके वो हमारा। तो भगवान प्यार करता है भोले बच्चों से, और आगे चलें, भोलो से, भोले माना जिसमें सच्चाई सफाई हो और अहंकार बिल्कुल ना हो, वो हैं भोले। भगवान को ज्ञानी आत्माएं बहुत प्रिय हैं, जो ज्ञान सुनते हैं और सुनाते हैं। बाबा कहा करते हैं, जिनका मुरलीधर से प्यार, मुरली से प्यार, उनका मुरलीधर से प्यार। एक और बाबा गहरी बात कह आए हैं, कई बच्चे कहते हैं यदि हम छाती खोल कर दिखाएं तो हमारे दिल में बाबा बैठा होगा। ये तो ठीक है, पर यदि तुम बाबा के परिवार को प्यार नहीं करते तो बाबा तुम्हारे उस प्यार को स्वीकार नहीं करता। इसलिए भगवान उन्हें प्यार करता है जो उसकी रचना को भी प्यार करते हैं। उसकी रचना में प्रकृति भी आ गई और सारा ब्राह्मण संसार पहली उसकी रचना है ना? तो हम बाबा के प्यार के पात्र बने। देखो आप सब बहनें सेवाओं में आई हैं, भाई भी, आपको ये पता होना चाहिए ये सेवा आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि सेवा में आना माना बाबा की नजरों में आ जाना, उसकी मदद के पात्र बन जाना। जो उसे मदद कर रहे हैं वो उसकी मदद के पात्र बन जाते हैं। तो सभी प्रभु प्यारे हो ना, भगवान के प्यारों की सभा है ये भी। ठीक है सुशील, प्रभु प्यारों की सभा है। सबको भगवान बहुत प्यार करता है और हम सब बाबा जब साकार में थे ना, कई बार पूछा करते थे, बताओ बाप का तुमसे ज्यादा प्यार है या तुम्हारा बाप से? तो सबका उत्तर तो वही होता था कि बाबा का ही ज्यादा है, क्योंकि मनुष्यों का प्यार तो बटा रहता है ना। तो बाबा भी हमें बहुत प्यार करता है और हम भी बोलो बहुत प्यार करते हैं। तो जहां बहुत प्यार होता है उसकी निशानी कुर्बानी, उसकी निशानी समानता, उसकी निशानी तीसरी एक और बात, बाबा कहा करते थे तुम बाबा से बहुत प्यार करते हो, बाबा ऊपर रहता है और तुम नीचे। कैसा प्यार, जिसे प्यार होता है उसके साथ रहने को मन करता है ना। हाँ, बाबा नीचे रहे, बुला लिया करे, उसे बुलाना पड़ेगा। तो जहाँ वो है हम भी वहां रहें, जैसा वो है वैसे ही हम भी रहें। आजकल करते हैं ना युवक, अगर फिल्म एक्टर ने फटी हुई पैंट पहनी है तो वो भी फटी हुई पहनेंगे। मैं गया वहां इंग्लैंड में भी, कई लोग ये जो पैंट है ना आगे से कई जगह से फाड़ के पहनते थे। फिर तो मैं सोचा ये बेचारे गरीब होंगे, फिर मैं अपने साथी से पूछा ये कई लोग ये फटी हुई पैंट क्यों पहनते हैं, कहा ये फैशन है आजकल का है। फटी हुई 3-4 हजार की आती है, साबुत 500 की आ जाती है, तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, 500 की लेके फाड़ के 3 हजार की बेच दो। तो देखो ये कैसा प्यार है, फटा हुआ प्यार। तो बाबा से हमारा प्यार है तो उसकी निशानी के जो वो कहे वो हम करें, उसमें कोई संशय भी न हो। बाबा ने जो कल अमर भव का वरदान दिया उसके पीछे रहस्य यही है कि बहुतों को संशय आ रहे हैं। एक टीचर बहन आई नीचे हमारे किचन में, सेवा में उसके लोग, कहा हमारे सेंटर में 8-10 बहुत अच्छे कुमार थे, 8 चले गए, 2 बचे हैं। मैंने कहा देख लो कहीं वो 2 भी भागने की तैयारी में ना हो, हम तो जानते हैं इसको, बहुत जाने वाले हैं, मैं तो 2-3 साल से यहाँ क्लास में कह रहा हूँ बहुत जाने वाले हैं। क्यों? आने वाले भी बहुत हैं। क्यों जाने वाले हैं? मैं किसी को बुरा नहीं कहता कि ये चले जाएंगे, पर क्यों जाने वाले हैं? एक तो परीक्षा, लेकिन सबको ये याद रहे बिना 4 घंटे रोज योग के कोई भी माया जीत नहीं बन सकता। बात कुमार और कुमारियों की नहीं, बड़े भी जा रहे हैं, बहाना दे देते हैं, अरे बाबा पता नहीं कैसा आजकल तो कभी जोर से बोलता है कभी धीरे बोलता है, पता नहीं बाबा को क्या हो गया, बाबा आता भी है या नहीं। कोई कह रहे थे पीछे जोर से बाबा बोला, ब्रह्मा बाबा आया था, इस बार शिव बाबा आया था, तो ये संशय उठते रहते हैं लोगों को। हमें हाँ कोई कुछ कहता है कोई कुछ, हमें तो सब सुनने को मिलता है ना, लोग क्वेश्चन लेकर बहुत आते हैं। तो ये निश्चय की भी परीक्षा, सत्य ज्ञान को न जानने के कारण कौन सी चीज क्यों घटित हो रही है उसे न जानने के कारण ये प्रश्न उठते हैं, संशय उठते हैं। लेकिन असली चीज होती है माया से हार, इसलिए जिसको माया को जीतना है वो अपने योग तपस्या को बढ़ाए। मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूं यहाँ, पिछली बार गुलजार दादी को बाबा ने ध्यान में नहीं खींचा था, डायरेक्ट प्रवेश कर लिया था, इसलिए जैसे ब्रह्मा तन में डायरेक्ट आते थे तो ब्रह्मा बाबा की आवाज में बोलते थे ना, तो गुलजार दादी की आवाज में बोला, इस बार दादी को ध्यान में लिया फिर बाबा आए, इसलिए अव्यक्त आवाज हो गई, क्योंकि वो ध्यान में गई तो वो वहां से एब्सेंट हुई और बाप दादा ने प्रवेश किया तो आवाज अव्यक्त हुई। तो ये रहस्य जानकर संशय से स्वयं को मुक्त रखना चाहिए। एक बात मैं पहले बता चुका हूं, फिर सुन लें, किसी को संशय आता हो, महाराष्ट्र की बहुत अच्छी कहानी है, वो सत्य घटना है संत ज्ञानेश्वर की, महाराष्ट्र के जो बैठे हैं वो जानते होंगे। तो संत ज्ञानेश्वर और उसके तीन और भाई बहने, ये ब्राह्मण के बच्चे थे, लेकिन कुछ कारणों से जो ब्राह्मणों की समिति थी वो इन्हें ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं थी, और उन दिनों ब्राह्मणों को नौकरी धंधा नहीं करना था, केवल ये कर्म कांड भिक्षाटन इस पर उनकी आजीविका चलती थी, वो कैसे जिएंगे। तो ये बार बार जाते थे, तो पाटन एक जगह है वहां गए, पंडितों की सभा थी, तो जो उनका अध्यक्ष था उसने बड़े गुस्से से कहा, ज्ञानेश्वर तुम अपने को बहुत बड़ा संत कहते हो, ये दो बैल जा रहे हैं, अगर तुम में कुछ ताकत है तो इनसे वेद मंत्र उच्चारण करके दिखाओ। एक बड़ा चैलेंज दे दिया, बैलों को रोक लिया गया, संत ज्ञानेश्वर खड़े हुए थोड़ी देर अपने ध्यान में, और सभी ने देखा कि बैल सुंदर आवाज से वेद मंत्र बोल रहे हैं। पंडित लोग वहां खोल के देखते रह गए, क्या होने लगा, उन्होंने तो सोच रहा है भाग जाएंगे बच्चे हैं। तो ये क्या था, वेद मंत्र बोल रहा था संत ज्ञानेश्वर मन में, लेकिन मुख यूज कर लिया था बैलों का, ये सिद्धि है एक। तो भगवान तो सभी सिद्धियों का स्वामी है, कभी कभी बाबा, जब दादी की तबीयत पिछले साल बहुत खराब थी, बुखार में दादी को लाया जाता था, तो उनके तन में प्रवेश नहीं करते थे, पीछे रहते थे और मुख उनका यूज कर लेते थे, तो फुल आवाज हो जाती थी। कभी देखा होगा आपने कि मुरली अव्यक्त आवाज में चली और भोग शुरू हुआ तो फुल आवाज हो गई, उसका कारण यही था, जब बाबा देखते थे कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है, बीमारी से लाए ना, बुखार था तेज, तो बाबा बाहर हो गए और खुद बोल रहे थे, मुख उनका यूज कर रहे थे, क्योंकि एक ही तन में ये दोनों पावरफुल आत्माएं बैठे हैं। सोचो, एक सर्वशक्तिवान, दूसरा ब्रह्मा, आप समझते हैं ब्रेन का क्या होगा। किसी ने देखा हो गांव गांव में देवियां आ जाती हैं किसी के तन में, देवियां कहते हैं उन्हें, देवियां होती नहीं, शरीर हिलता रहता है ना, स्थिर भी नहीं बैठ पाते, दूसरी आत्मा ही साधारण आत्मा तो ही ब्रेन उसको सहन नहीं कर रहा है, और भगवान आ जाए। सोचो क्यों ब्रह्मा तन में शिव बाबा आए, क्योंकि उसका ब्रेन ही सर्वशक्तिवान को अपने में बैठा सकता था, अन्यथा छोटे मोटे के तन में आ जाते तो गिर ही जाते, ऐसे होने लगते। ऐसे ये रहस्य है, ब्रह्मा के तन में ही क्यों आए, क्योंकि वो वही आत्मा है ना, नेक्स्ट टू गॉड, इसलिए उसका ही ब्रेन सबसे पावरफुल होता है। चलें फिर से, अमर बनना है सबको, बनना है अमर, कोई भी चीज हमें बाबा से छुड़ा न सके, सदा हम बाबा के साथ रहें। कल बाबा ये भी बार बार याद दिला रहे थे, बाबा साथ है और सदा साथ रहेगा। इस रहस्य को भी समझ लेना है, जिनको ये स्मृति रहेगी कि बाबा मेरे साथ है, उन्हें साथ का अनुभव होता रहेगा, और जिन्हें जरा भी संशय आया वो दूर हो जाएंगे। इसलिए पहले तो ये अभ्यास लंबे समय से करते चले, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, इसका अनुभव अलग होगा, क्योंकि जो आने वाला समय है हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, विनाश का समय, परिवर्तन का समय, सृष्टि पर क्या क्या होगा, हरेक को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जिनको ये अच्छा अभ्यास हो गया होगा, बाबा मेरे साथ है, उन्हें सहज मदद मिलती रहेगी। देखो ऐसा समय आएगा कोई घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अभी भी कर्फ्यू लग जाता है तो लोग हफ्ते में ही परेशान हो जाते हैं, न दवाई मिलती है। सबसे जरूरी चीज आजकल क्या है? दवाई। दवाई नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता। अब जिनके घर में छोटे बच्चे, दूध न मिल रहा हो कितनी कठिनाई हो जाती है। चलो बड़े तो छोड़ दो, कुछ भी करके जिएंगे, छोटे बच्चों को दूध चाहिए। सब्जियां नहीं मिलती, अब तो हफ्ते हफ्ते होता है और तब छह छह मास तक कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब बोलो, जिन्होंने ये अभ्यास किए हैं, जो योगयुक्त अच्छे रहे हैं, जिन्होंने अपने को प्रकृति का मालिक बनाया है, उन्हें घर में ही सब कुछ मिलेगा। दूध की जरूरत होगी, खुल जाएगा, दूध आ जाएगा, पुलिस वाले दे जाएंगे। ठीक कहा आपने, प्रकृति पूरी मदद करेगी। और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, जिन्होंने सोचा होगा पैसा इकट्ठा करके रखो, विनाश में काम आएगा, पैसा उधर रखा होगा, वहां तक जा भी नहीं पाएंगे उठाने के लिए, ये स्थिति हो जाएगी। पैसा बहुत होगा, थैली में 10,000 रुपए पड़े होंगे, लेकिन दवाई नहीं होगी, जो 5 रुपए की आती है वो मिलेगी नहीं कहीं। तो पता चलेगा पैसा नहीं, स्थिति काम आ रही है। इसलिए जो लोग पैसा कमाने के चक्कर में मुरली भी नहीं सुनते, सवेरे भी नहीं उठते, क्योंकि रात को 1 बजे सोते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपना जीवन नष्ट कर दिया। मैं सीधी भाषा बोल रहा हूं, जरा महसूस होगा कि वो बुद्धिमान नहीं थे, जिन्होंने आए हुए भगवान की बातों को समझा नहीं, और ये सोच लिया ज्ञान तो ले लिया ना, बाबा को याद तो हम करते ही हैं, इससे काम नहीं चलेगा। योगयुक्त स्थिति चाहिए। बाबा को याद तो सभी करते हैं, बाबा बाबा मेरा बाबा ये तो कहते हैं, वो भी ठीक है, पर योगयुक्त स्थिति जिसमें हमें महसूस हो बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है, जिसमें हमें महसूस हो हम परम धाम में बाबा के साथ हैं, जो बाबा ने हमें बहुत सारी ड्रिल सिखाई है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, ब्राह्मण सो, फरिश्ता सो, देवता, ये अभ्यास करो, जो वो करते हैं उन्हें उस समय बाबा की बहुत मदद मिलेगी। मैं आपको अभी अभ्यास बता देता हूँ कैसे करेंगे, और आज सोने से पहले ही अभ्यास करके सोना, और कल उठ के बहुत अच्छी तरह करना। मैं ब्राह्मण यहाँ, मेरी बाई ओर मेरा फरिश्ता स्वरूप, चित्र बनाओ उसको, फरिश्ता जिसको बाबा कभी कहते थे, ड्रेस टंगी है खूंटी पर तुम्हारी, शरीर ड्रेस खूंटी पर टंगी है, दाई ओर देव शरीर, देव स्वरूप, देवताई ड्रेस। अब मैं आत्मा यहां से निकलती हूं, अब यात्रा कराएंगे आत्मा को, आत्मा चली है, देखेंगे ज्योति बिंदु आत्मा जा रही है, फरिश्ते स्वरूप में प्रवेश कर लिया, उसे देखो यहीं से, आत्मा मस्तक में चमक रही है और नीचे प्रकाश का शरीर है, किरणें फैल रही हैं, फिर वहां से आत्मा निकलती है, फिर निकले हुए देखो, चल रही आत्मा और देव शरीर में बैठ गई, डिवाइन बॉडी, कंचन काया, डबल ताज, चमकता हुआ चेहरा, संपूर्ण पवित्र। फिर वहां से आत्मा निकल के आ गई मेरी ओर, इस देह में प्रवेश कर लिया, ऐसे देखेंगे पहले, फिर धीरे धीरे ये करते हुए फील होने लगेगा, ये मैं हूं, ये भी मैं हूं, और ये तो मैं हूं ही, तीनों मेरे स्वरूप, ब्राह्मण सो, फरिश्ता सो, देवता। पसंद है? आज इसका अभ्यास करके सोएंगे, 3-4 बार घूमेंगे अपने तीनों शरीरों में, इससे देह से डिटैचमेंट भी अच्छा हो जाएगा, न्यारापन। ऐसे अभ्यास करते करते हम अनासक्त होते जाएंगे। बाबा की मुरलियों में सबने सुना है, ऐसा अभ्यास करते करते कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी, अर्थात हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, हम बाबा के बहुत समीप पहुंचेंगे। और सबसे सुंदर बात रहेगी कि ये अभ्यास करने से हमें बहुत अलौकिक सुख का अनुभव होगा, बहुत अलौकिक सुख जिसको बताया नहीं जा सकता, जो केवल अनुभव के द्वारा चखा जा सकता है। तो सभी करके सोएंगे, ठीक है, पसंद है? और जो मैंने पहले याद दिलाया था, कल सवेरे उठते ही और आज सोते हुए जो कल देखा उसको सामने लाएंगे, जो आपकी फीलिंग थी, सबकी फीलिंग एक जैसी तो होती नहीं, तो फीलिंग थी उन्हें इमर्ज कर देना फिर से, जैसे कि हम पुनः वही हैं, कल नहीं हुआ था वो, जैसे हमारे सामने हो रहा है पुनः। तो ये हमें योगयुक्त बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। चले अब सभी, हम सभी अब बैठेंगे बाबा की किरणों के नीचे, परमधाम में देखेंगे सर्वशक्तिवान को और इसकी शक्तियों की किरणें नीचे मुझ पर पड़ रही हैं। एक ही संकल्प, इसको रिपीट भी कर सकते हैं, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ में समा रही हैं।
Hare।